Todavía no tenemos.
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विख्या नमोताहि जाते भये अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हे सयाने उजून के सतत केवल ज्ञान पाने उजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज मैं ये मान के चल रहा हूं कि हम सभी लोग रोज अपने जीवन को अच्छा बनाने की बात पर विचार कर रहे हैं और आप उसमें शामिल हैं। जीवन को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी दृष्टि को अच्छा बनाएं और दृष्टि को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है कि हम उनके चरणों में बैठें जिन्होंने अपनी दृष्टि को निर्मल बना लिया। दृष्टि की निर्मलता के लिए सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य जरूरी है और इतना ही नहीं, सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य तो बहुत लोगों को मिला है पर उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा भक्ति और लगाव भी होना चाहिए। वो श्रद्धा भक्ति और अनुराग या कि लगाव उनके गुणों के प्रति वो हमें धीरे धीरे उनके जैसे बनने की प्रेरणा देता है। कभी कभी ऐसा भी अपने जीवन में होता है कि किसी की उपस्थिति भी हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है। हमारी दृष्टि को हम पूरी जिंदगी भर और निर्मल ना बना पाए और शायद कोई क्षण ऐसा आ जाए कि हमारी दृष्टि किसी व्यक्ति विशेष की उपस्थिति से भी निर्मल हो सकती है। भगवान के चरणों में रोज बैठते हैं, जरूरी नहीं है कि दृष्टि निर्मल हो जाए, पर पता नहीं किस क्षण हमारी भाव दशा ऐसी बने कि सचमुच भगवान के चरणों में बैठे बैठे और श्रद्धा ऐसी उमड़ आए कि वो संसार की वास्तविकता का हमें बोध करा सकती है। दृष्टि की निर्मलता के मायने हैं संसार की वास्तविकता का बोध होना। दृष्टि की निर्मलता के मायने हैं टोटल एक्सेप्टेशन। हम जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर लेते हैं, अपनी तरफ से उसमें कोई भले और बुरे का आरोपण नहीं करते, वरना हम पूरी जिंदगी यही करते रहते हैं। जो हमारे अनुकूल है वो हमें भला जान पड़ता है और जो हमारे प्रतिकूल है वो हमें बुरा जान पड़ता है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता भी हमारी बहुत मानसिक है। वास्तव में वो अनुकूल है या नहीं है ये हम नहीं जानते, पर हमें तो जब वो अनुकूल मालूम पड़ता है तो हम उसे ही भला जान लेते हैं और जो प्रतिकूल जान पड़ता है उसे हम बुरा मान लेते हैं। इस तरह इष्ट और अनिष्ट की हम कल्पना कर लेते हैं। वास्तव में इष्टनिष्ठ नहीं होता। हमारी अपनी कल्पना से बहुत सी चीजों को हम इष्टनिष्ठ बना लेते हैं और वास्तविकता से विमुख हो जाते हैं। इस तरह हमने अपनी दृष्टि को निर्मल बनाने के लिए सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण ली है और सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण में बैठ करके और जो उनके द्वारा कहे गए प्रयोजनभूत तत्व हैं उनका विचार भी शुरू किया है। और इतना ही नहीं, और हमें लगने लगा है कि हम अगर ठीक ठीक दृष्टि प्राप्त करके जिए तो हमारे जीने का ढंग बदल जाएगा। अभी हम जिस तरह जीते हैं उसमें, और जब हमारी दृष्टि निर्मल हो जाती है तब उसके बाद जीने में बाह्य में तो कोई अंतर नहीं मालूम पड़ता। पहले भी हम खाते पीते थे, पहले भी हम संसार के सब काम करते थे, दृष्टि की निर्मलता के बाद भी वे सारे काम हम करेंगे, कोई छूटेगा नहीं। लेकिन अब दृष्टि बदल जाने से उन कामों में बहुत से चेंजेस जो बहुत आंतरिक हैं। अपन ने इस पर भी कई बार कई उदाहरण से समझा है कि जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं और रोज हम यहाँ आकर के और भगवान के चरणों में पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कभी कोई वचन का होती तो उसको भी सुनते हैं, और रोज हमारी दृष्टि ये रहती है कि मैं ये सब चीजें इसलिए कर रहा हूं कि मेरा संसार अच्छे से चलेगा, मेरी दुकान ठीक से चलेगी, मुझे भोग उपभोग की सामग्री बढ़िया से मिलेगी। एक इस दृष्टि से हम करते हैं, तब यदि कभी हमारी दुकान गड़बड़ा जाती है या कि हमें और कोई विपत्ति आ जाती है तो मन कैसा करने लगता है कि अरे इतनी पूजा करी, इतना स्वाध्याय करा, इतनी वाचना सुनी और इसके बाद भी मेरे ऊपर इस तरह का। हम उस सब से विमुख होने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। और यदि हम इस दृष्टि से कर रहे हो कि यह सब तो मेरा कर्तव्य है और इस जो बांधे गए बुरे संस्कार हैं वो टूटते हैं और मेरे अंदर अच्छे संस्कार आते हैं, मेरा जीवन तो कभी कोई विपत्ति भी आ जाए तब भी हम उसको इससे तो नहीं जोड़ेंगे। विपत्ति मेरे अपने किसी पाप कर्म के उदय से आई है, ये जो भगवान का पूजा पाठ और स्वाध्याय है वो तो मैंने जो है अपने किसी पूर्व के पुण्य की वजह से प्राप्त किए। हमारे मन में ऐसी शांति मिलेगी, हमारा एटीट्यूड चेंज होगा तो हम क्रियाएं जो कर रहे हैं उनका हमें प्रतिफल भी अलग ढंग से मिले। एक बहुत अच्छी भावना से किया गया अच्छा काम अनंत गुना फल देता है, लेकिन वही अच्छा काम बुरी भावना से किया जाए तो उसका फल शून्य हो जाता है। बताइए, काम अच्छा है और अच्छी भावना से अगर करेंगे तो उसका फल अनंत गुना हो जाए, लेकिन वही काम और बुरी भावना से किया जाए तो उसका फल क्या होगा? जीरो हो जाएगा। कहने का अर्थ ये नहीं है कि जीरो हो जाएगा, आशय उसका यही है कि उससे जो लाभ मिलने वाला था वो लाभ नहीं मिले। इस तरह दृष्टि की निर्मलता का महत्व बहुत है, और जैसे ही हमारी दृष्टि निर्मल होती है हमें अपनी वास्तविकता का ज्ञान होता है। और इसके बाद हमने पिछले दिनों समझा था कि फिर हमें बहुत कुछ जिम्मेदारी लगने लगती है कि अब तो मुझे अपने जीवन में मेरी दृष्टि फिर से मलिन ना हो जाए, मुझे ये जो ज्ञान हुआ है वो फिर से खो ना जाए। जैसे किसी के हाथ में अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण आ जाए तो कितनी जिम्मेदारी है कि कहीं दर्पण पर धूल ना लग जाए, कि कहीं किसी का धक्का लगने पर दर्पण नीचे गिर के टूट ना जाए। ऐसा ही फ्राइबल है, ऐसा ही बहुत डेलिकेट है सम्यक दर्शन भी। दृष्टि की निर्मलता भी होती है और किसी भी क्षण हमारे थोड़े से असावधानी से वो छूट भी सकती है। उपशम सम्यक दर्शन तो अंतर्मुहूर्त के बाद नियम से छूटता ही है। बात को हम थोड़ा सा प्रयत्न करके उसे क्षयोपशम बना ले तो बहुत समय तक वो रह सकता है। फिर हमारी श्रद्धा बहुत समय तक बनी रह सकती है, हमारी निर्मलता बहुत समय तक बनी रह सकती है, लेकिन उसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं सोचता हूं कि सम्यक दर्शन और ज्ञान को मेंटेन करने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, उनके गुणों में वृद्धि करने के लिए, उनकी निर्मलता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में व्रत नियम और आचरण इन सब को भी अंगीकार करें। जितनी हमारी शक्ति है, आचार्य भगवंतों ने तो यथाशक्ति व्रत नियम की बात ही अपने आप लिख दी है, उतना ही नियम उतना ही व्रत करना जिससे कि परिणामों में संक्लेश ना हो। क्योंकि मैंने वह व्रत और नियम अपने परिणामों की निर्मलता के लिए किया है, मैं अगर उन्हीं व्रत और नियमों के माध्यम से संक्लेश करने लगूं तो फिर उन नियमों का मेरे जीवन में क्या लाभ हुआ। शुरू शुरू में जब हम प्रारंभ करते हैं कोई भी नई चीज, तो संभव है कि हमारी सहन शक्ति कम होने की वजह से हमें जरा सा व्रत नियम करने में ही और संक्लेश होने लगे, संभव है। लेकिन हम उस समय भी सावधानी रख करके उस संक्लेश से बचने का प्रयास करेंगे और अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे। असल में व्रत नियम दो तरह से हमारे जीवन को ऊंचा उठाते हैं। जितने जितने हम व्रत करते चले जाते हैं उतना उतना हमारे भीतर कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, और जितना हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है उतना और अधिक हम लालायित हो जाते हैं अपने जीवन को मर्यादित करने के लिए। व्रत नियम शब्द की जगह पर अगर अपन ये कर लें कि अनुशासन, यह अपने जीवन की मर्यादाएं स्वयं निर्धारित करना, तो शायद ज्यादा आसान होगा। क्योंकि आज ये जो शब्द हैं व्रत नियम संयम त्याग तपस्या, ये सब जो है वो ऐसे लगने लगे हैं कि ये कोई हवा है और वो हमको कहीं मिल जाएगा तो पकड़ लेगा वो, है ना। जैसे कि बच्चे लोग डरते हैं, उनको हवा कह दिया तो वो डर लगने लगता है, ऐसे अपन बड़े लोगों को भी सुनते ही साथ और एक इमेज बन गई। ये जितनी इजी चीजें थी, जितनी आसान चीजें थी, पता नहीं कैसा एक समय आया और वो सब कठिन लगने लगे। क्यों कठिन लगने लगी? अपनी शक्ति से ज्यादा कोई इनको कर लेता है और फिर संक्लेश करता है, तो दूसरे व्यक्ति को मैसेज ये मिलता है कि भैया कठिन है मामला, देखो उनको, देखो उनने किया था उनसे नहीं सदा कितना संक्लेश हुआ, उनने किया था उनसे नहीं सदा कितना संक्लेश, अपन से तो हो ही नहीं सकता, अपन ने अपना निर्णय फौरन ले लिया। अपनी शक्ति को नहीं देखा अपन ने, सिर्फ ये देखा कि दूसरा जो शक्ति नहीं होने पर भी जिसने किया और थोड़ी सी विपत्ति में पड़ गया उसको देख करके अपन ने, जैसे ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी में जाए और वहां पर पता करे तो अधिकांश लोगों को थर्ड डिवीजन आई है, अधिकांश लोग फेल हो गए हैं, भैया छोड़ो क्या करना अपने को, थर्ड डिवीजन आती है। लेकिन ये नहीं दिखाई पड़ता कि वहीं पर रह करके एकाध को कोई गोल्ड मेडल भी मिला है, वो एकाध को ही मिला हुआ है, वो उसका दोष नहीं है, ना पढ़ाई का दोष है, ना उस यूनिवर्सिटी का दोष है, वो तो व्यक्ति का है। सो व्रत नियम संयम सब अच्छे हैं, लेकिन जब उनको ग्रहण करने वाला अपनी शक्ति से ज्यादा करने लगता है और संक्लेश कर लेता है तो उसका मैसेज गलत चला जाता है। और वही मुझे लगता है कि ये शब्द इतने अधिक हमारे जीवन में, जबकि बहुत आसान होना चाहिए थे, व्रत कहते ही आनंद से मन खिल जाना चाहिए था, और अब तो व्रत कहते ही हमसे हो नहीं पाएगा, ऐसा जो है संयम शब्द कहते ही ऐसा लगने लगता जैसे कि बहुत बाइंडिंग हो गई हो, बहुत बंधन में डाल दिया जा रहा हो, जबकि संयम कहते ही अरे वाह ये ठीक है, मैं कितना मुक्त हो जाऊंगा बाकी चीजों के विकल्प से, मैं अपने को संयमित कर लूंगा, मैं अपने को अनुशासित कर लूंगा तो बाकी चीजों का विकल्प मुझे नहीं होगा। इस तरह हमें अपना मन बनाना चाहिए। मैं तो अभी सिर्फ मन बनवा रहा हूं आपका, क्या आप व्रत नियम संयम को, फिर इनके बारे में चर्चा तो करनी है अपने को, पांच व्रत हैं भैया और शाबक के तो 12 व्रत हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये तो हो जाए कि हाँ हमको व्रतों के प्रति रुचि जागृत हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम व्रतों को क्लेश का कारण मानते हैं। लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति व्रत नियम इत्यादि को क्लेश का कारण मानता है, इसके मायने हैं वो अभी भोग विलास की सामग्री को सुख का कारण मानता है, और इस तरह से व्रत नियम के प्रति द्वेष है और भोग विलास की सामग्री में राग है, सो अभी तो संसारी ही है, अभी उसको मोक्ष मार्ग का ज्ञान हुआ नहीं। तो व्रत नियम को कभी हम क्लेश का कारण ना मान लें, वो तो निर्जरा का ही कारण है, लेकिन हम अपनी शक्ति को विचार करके ही उसका पालन करें, और काहे के लिए करें, निराकुलता के लिए। हमने व्रत निराकुलता के लिए पालन करने का नियम किया है, जैसे कि रात्रि भोजन का मैं त्याग कर दूंगा तो क्या होगा, मुझे क्या लाभ मिलने वाला? ये लाभ मिलेगा कि मुझे रात में खाने की जो आकुलता रहती है, और मेरी वजह से चार लोगों को और आकुलता रहती है कि अब 9 बजे तक खाएंगे तो सब लगे हैं उसी में, वो आकुलता मिट जाएगी, मुझे उतना समय सेफ हो जाएगा। काय के लिए सेफ हो जाएगा? टेलीविजन देखने के लिए नहीं, मुझे दूसरा और धर्म ध्यान करने के लिए उतना समय सेफ हो जाएगा। मैं आश्चर्य करता हूं कि पहले माँ लोग अपने हाथ से अंगीठी जलाया करती थी, चूल्हा फूकना पड़ता था, घंटों घंटों में जला करता था, मसाले पीसना है तो दो दो चार चार दिन से मन बनाना पड़ता था और फिर मसाले पीसना पड़ते थे। अब तो बटन दबाते ही मसाला तैयार हो जाता है, बटन दबाते ही आटा बन जाता है, बटन दबाते ही जो है और गैस चालू हो जाती। वो जो टाइम पहले उन चीजों में एक्स्ट्रा कंज्यूम होता था वो सेफ हो गया, लेकिन वो कहां चला गया पता नहीं लगता। इतने सारे साधन होने के बाद भी हमारा समय ज्यों का त्यों व्यस्ततम है। असल में हमने उसका सदुपयोग करना नहीं सीखा। मुझे आज दूसरी बात यह कहनी है कि व्रत नियम हमारे समय को सदुपयोग करने के लिए हैं, हमारे समय को जो कि व्यर्थ चला जाता है उसको बचाने वाले। आत्मविश्वास तो बढ़ाते ही हैं लेकिन हमारे समय को भी सेफ, क्योंकि हमने अपने जीवन को इतना मर्यादित कर लिया। कोई व्यक्ति अगर ठीक ढंग से अपनी कार ड्राइव करे तो मनी एनर्जी और टाइम तीनों सेफ कर लेता है कि नहीं? और जीवन की गाड़ी को भी अगर हम ठीक ढंग से मर्यादित और अनुशासित अगर ले जाएं अपने जीवन की गाड़ी को तो टाइम मनी और एनर्जी तीनों सेफ होंगी। बड़ा कहना चाहिए बहुत बहुत लाभ ही लाभ है इन व्रत नियम इत्यादि के करने से, मर्यादित होने से। एक व्यक्ति ने बहुत छोटे छोटे से उदाहरण सुना रहा हूं, फिर मैं वो भी बात करूंगा कि कौन से 6 कर्म करना चाहिए श्रावक को। वो घटना याद आ गई मुझे। एक व्यक्ति ने अभी जब बहुत हल्ला हुआ कि चाय में गड़बड़ी है, चाय में बहुत गड़बड़ी है, नॉन वेज मिलाए जाने लगा है, कंटेंट्स जो है रॉ मटेरियल जो है एनिमल प्रोडक्ट है, बड़ा हुआ। तो उन्होंने देखिए, जिसको अगर छोड़ने का बहाना चाहिए उसको तो बहुत अच्छा है, कई लोग तो छोड़ना ना पड़े इसलिए उसके तर्क वितर्क में फंस गए कि अब छूटी चाय। तो उनने अपने को संभालने के लिए कहां कहां दूर दूर तक फोन किया कि भाई सही क्या है ये तो बताओ। उनने कहा भी कुछ कंफर्म नहीं हो रहा, तो ठीक है चलने दो अभी, छोड़ो मत। लेकिन जिस व्यक्ति को छोड़ना है उसने क्या कहा कि बहुत अच्छा रहा, हम तो पहले ही सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ तो कैसे ही तो एक बहाना मिले छोड़ने का, उन्होंने छोड़ दी। वो कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, घर में 5 बेटियां हैं और बहुत बहुत कम की पैसा उनको कुल 8,000 रुपए महीने मिलते। उन्होंने मुझे पूरी अपनी स्थिति बताई, कोई ज्यादा नहीं होते आज के समय में 8,000 रुपए महीने मिलना, और 5 बेटियां हैं उनको पढ़ाना लिखाना है, उसका ही खर्चा इतना हो जाता है कि घर में 2 जून का ठीक ठीक भोजन आ सके और फिर इनके ब्याह के लिए कुछ राशि संचित हो सके, बात मुश्किल है। और वो कहते हैं कि मैं बहुत आश्चर्य में हूं कि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं अगर चीजों का त्याग कर दूं जो चीजें बिल्कुल अनावश्यक है मेरे लिए हार्मफुल भी हैं तब भी मैं अपने पैसे को सेव कर सकता हूं। मैंने चाय छोड़ दी, मुझे हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो 4-8 लोगों के साथ जरूर चाय पीना पड़ती थी, उनको पिलाना पड़ती, जब उनके साथ पीता हूं तो उनको पिलाना पड़े। मेरे अपने चाय का महीने भर का खर्च अब इतना बचने लगा है कि मैं खुद दंग हूं कि मैंने कभी ऐसा हिसाब ही नहीं जोड़ा था कि अगर मैं चाय पीना और पिलाना छोड़ दूं तो मेरा इतना फिजिकल और स्पिरिचुअल कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। उसकी बात नहीं कर रहा हूं फिजिकली और स्पिरिचुअली, अभी तो सिर्फ इकोनॉमिकली। व्रत नियम हमें जो है वो इस तरह का लाभ भी दे रहे हैं। जितनी ज्यादा हम लोग आज अभावग्रस्त अगर कोई हैं तो उसका एक ही कारण है, नैतिक पतन। अभी हम धार्मिक तो बनने की बात ही ना करें, अभी हम नैतिकता का भी पालन कर ले बे तो ये जो क्राइसिस है, ये जो संघर्ष है ना, वो भी खत्म हो जाए। हमारे साहब हम उनको कहते हैं जो हमको पढ़ाया करते थे प्रोफेसर्स, अभी भी मेरे मन में वो ही आता है, हमारे साहब। तो वो कहा करते थे जब हम लोग शुरू में उनके क्लास में पहुंचे, दुर्गे साहब तो पहुंचे तो आर यू रीड इन हिंदी आर इन इंग्लिश आर इन संस्कृत, हम लोग बड़े आश्चर्य में कि ये पहले प्रोफेसर हैं जो कह रहे हैं कि आप किस में पढ़ना चाहेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में या कि संस्कृत में। इनको संस्कृत भी आती है, बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भी उनके ऊपर छोड़ दिया, आपको जैसे पढ़ाना हो पढ़ाइएगा। उनके रूम में गए हम लोग तो संस्कृत की बहुत किताबें रखी हुई, हम लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया और पूछा कि आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते। तो बोलते कि मैं तुम लोगों के जैसे दो चीजें खाता पीता नहीं हूं। मैंने कहा सर हम लोग क्या खाते पीते हैं क्या? हाँ खाना पीना मतलब समझते हैं आप, ऐसा नहीं समझना। खाने का मायने नॉनवेज ही होता है, खाना शब्द वहीं से आया, हमारे यहां तो भोजन था। खाना उर्दू का शब्द है, खाना मतलब नॉनवेज और पीना मतलब लिकर, अल्कोहल वही है, खाना पीना दोनों चीजें। तो बोले मैं खाता पीता नहीं हूं, मतलब बोले मैं इंटरनेशनल वेज नहीं खाता और इंटरनेशनल ड्रिंक नहीं करता। और कॉम्प्लिकेशन हो गया, ये इंटरनेशनल वेज कौन सा है भाई? आलू। वो कहते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय सब्जी है, दुनिया खाती है, मैं नहीं खाता, इससे मस्तिष्क को कोई लाभ नहीं होता। और इंटरनेशनल ड्रिंक क्या है? चाय, मैं नहीं पीता, दूध पीता हूं, इसलिए मैं सब काम करता हूं। अब बताइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोग आलू खाते हैं और चाय पीते हैं वो कुछ नहीं कर पाते, वो भी बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन उनका अपना सोच देख लिएगा कि उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से अनुशासित करके और उसका लाभ लिया। हम सिर्फ कहना यह चाह रहे हैं कि अपने जीवन को अनुशासित करके हम अपने जीवन को लाभान्वित करते हैं। हमारे आचार्यों ने हमारे जीवन को अनुशासित करने के बहुत से उपाय बताए, कैसे अनुशासित करें सुबह से शाम तक, जैसे बच्चों को हम पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें स्कूल भेजते हैं तो वहां पूरा दिन वो कैसे करें, कैसे वो पढ़ें, तो उनको विषय विभाजित कर दिए जाते हैं कि इन इन विषयों को पढ़ना है, और छह विषय तो कम से कम हैं, साइंस भी पढ़नी है शुरू के बच्चों को, जबकि वो डिसाइड नहीं करते हैं कि उन्हें साइंस आर्ट या कॉमर्स क्या पढ़नी है, हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगी, सोशल नॉलेज भी चाहिए है, उधर आपके राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए तो राजनीति शास्त्र भी उसके साथ जोड़ा जाएगा, सारे विषय पढ़ाए जाएंगे कम से कम छह विषयों के बारे में। तो ठीक वैसे ही छह विषय शायद दिन भर के लिए श्रावक के जीवन को अनुशासित करने के लिए कहे गए। कैसे हम अपने जीवन को अनुशासित करें और उस अनुशासन के द्वारा कैसे अपने जीवन को ऊंचा उठाएं? षट कर्माणि दिने दिने, देव पूजा, गुरुपास्ति, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग, सबने सुने होंगे। मैं सब चीजें वही कहता हूं जो आचार्य भगवंतों ने कही है, बस इतना जरूर है कि मेरी कोशिश ये रहती है कि बात प्रैक्टिकेबल हो, वो जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वो हमारी समझ में आ सके और उस समझ में आने के बाद हम उसका उपयोग कर सकें। और कोई बात नहीं, कई बार मुझे लगने लगता है कि ये सारी बातें तो बहुत लिखी हुई हैं, कौन नहीं जानता है, आज का श्रावक तो जानता है कि मुझे देव पूजा करनी चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, गुरुजनों का सानिध्य करना चाहिए, संयम तप और त्याग करना चाहिए, लेकिन इन सबको हमने बहुत प्रैक्टिकेबल नहीं बनने दिया है। उनसे जो लाभ होना चाहिए थे वो लाभ हमको नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम इन सब पर अलग अलग विचार करने का मन बनाए कि आखिर देव पूजा के मायने क्या है और उससे मुझे लाभ क्या है। छोटी सी बात भी हमारे जीवन को लाभ दे सकती है। एक उदाहरण सुना करके आपको मैं बात कहूं कि कैसे एक छोटी सी बात भी हमारे जीवन को इतना बड़ा लाभ दे सकती है। और वो देव पूजा का लाभ हमें ऐसे मिल सकता है, एक छोटी सी किताब मेरे पास बच्चों के लिए हुआ करती थी, मैं 86 में जब चतुर्मास कर रहा था तो छोटी छोटी सी किताबें बच्चों के लिए रख रखी थी, वो आएंगे उनको दे देंगे, पढ़ेंगे, बाद में जब आते हैं तो पूछ लेते हैं तुमने पढ़ा? हाँ नहीं पढ़ा, तो अब पढ़ना, अच्छा पढ़ेंगे, फिर पढ़ करके जब आएंगे तो कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। एक बड़े व्यक्ति कहने लगे कि हमें भी कोई किताब दे दो, हम उनके लिए ढूंढने लगे, बड़ी सी किताब ढूंढने लगे, भाई बड़े व्यक्ति हैं बड़ी किताब ढूंढने। तो बोले महाराज ये तो रखी छोटी वाली, ये दे दो ना। मैंने कहा नहीं आप इतनी छोटी है तो बच्चों वाली किताब। अरे बोले हम इतने ज्यादा थोड़ी समझदार हैं, अभी तो हम शुरू कर रहे हैं तो हमें तो यही दे दो। मैंने कहा ठीक है आप नहीं मानते तो ले लो। ले गए वो, बच्चे ले जाते थे तो दूसरे दिन पढ़ पढ़ू के दे देते, दो दिन में तीन दिन में दे देंगे, वो जनाब लौटी नहीं, आठ दिन तक नहीं आए। हमने कहा इतनी सी किताब ले गए और फिर आठ दिन हो गए नहीं के बाद आए। और रख दी उनने किताब। हमने कहा पढ़ ली? बोले महाराज किताब बहुत उपयोगी मेरे जीवन में साबित हुई, मैं 55 वर्ष का हो गया, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मैंने कहा आपको इस किताब में से इतना कुछ मिल गया? बोले हाँ महाराज, आप तो मुझे सुबह से देव दर्शन और पूजन का नियम दे दीजिए। अरे देव दर्शन और पूजन का नियम लेने से क्या होगा? बोले बहुत लाभ हो जाएगा मुझे। तो ये तो बताओ कि इस किताब में क्या पढ़ा? बोले कुछ नहीं, इस किताब के एक पन्ने पर एक ही वाक्य लिखा है, एक एक पन्ने पर एक एक वाक्य, वचनामृत है तो वचनामृत एक पन्ने पर एक छोटा सा वाक्य लिखा है। एक पन्ने पर लिखा था कि जिसने जीवन में उगता सूरज नहीं देखा उसके जीवन में सूरज कभी नहीं उगता। इतनी सी बात, जिसने अपने जीवन में उगता सूरज नहीं देखा, मानो उसने अपने जीवन में, उसके जीवन में कभी सूरज उगे गए। अब मैं आपसे ये नियम इसलिए ले रहा हूं ताकि मैंने संकल्प कर लिया है कि उगता सूरज तो देखूंगा, और उगता सूरज तभी देख पाऊंगा जबकि मैं यहां मंदिर आऊं और नहा धो करके और भगवान की पूजा पाठ करूं। और रोज वो ऐसा स्थान था पटेरिया जहां की सुबह 6 बजे आ जाओ तो किसी भी छत के ऊपर खड़े होके मंदिर के आराम से सामने से उगता हुआ सूरज बहुत अच्छे से देखा जा सकता। तो मुझे यहीं पर पूजन का नियम दे दीजिएगा, मैं सुबह से नहा धो के यहां पूजा करूंगा और ऊपर खड़े होकर के उगता हुआ सूरज देखूंगा। उनके जीवन में तो सूरज इतने मात्र संकल्प से ही उग गया। हम उतना समय सोने में जाया कर देते हैं। 9 बजे सो के उठने वाला व्यक्ति अगर अपने जीवन में पूजा का संकल्प कर ले तो मानिएगा कि उसका जीवन तो व्यवस्थित हो ही गया, उसके लिए अलग से कर्मों की निजरा और पुण्य के अर्जन का उपाय भी मिल गया। देव पूजा शायद हमें अपने जीवन को शुरू करने से पहले भगवान के चरणों से शुरुआत करने के लिए प्रेरणा देती है कि इसके पहले कि हम संसार की तरफ जाएं, हम ये याद रखें कि इस संसार में फंसना नहीं है। जो संसार से मुक्त हो गए उनके चरणों में माथा टेक करके आए कि जा रहा हूं संसार में, कहीं ऐसा ना हो कि फंस जाऊं। आपकी स्मृति दिन भर बनी रहे तो शायद संसार मुझे फंसा नहीं पाए। इतना छोटा सा मैसेज भी ले लें और बहुत बड़ी बात नहीं ले। मैं वीतरागता के चरणों में बैठा हूं, संसार से मुक्त व्यक्ति के चरणों में आकर के सुबह से माथा टेक रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि इसके पहले कि संसार मुझे घेरे, इससे पहले कि मैं संसार को देखूं, मैं आपको देख लेना चाहता हूं ताकि आपकी छवि इस संसार के बीच पूरे दिन भर बनी रहे। और कल फिर अगर मेरी आंख खुलेगी तो सबसे पहले मैं आपको ही देखना पसंद करूंगा, पूरे संसार को तो बाद में देखूंगा। वीतरागता का दर्शन सुबह से इसलिए अनिवार्य हो गया कि हमारा अपना स्वभाव, हमारी अपनी वास्तविकता को हम भूल ना जाएं, वो हमेशा हमें स्मरण में बनी रहे और संसार का जो प्रपंच है वो हमें बांध ना सके, हम उसमें रह करके भी उससे अलिप्त रह सके। हम चाहते तो यही है ना, कौन नहीं चाहता, कौन संसार में लिप्त होकर के उसके प्रपंच में फंसना चाहता है। सब चाहते हैं संसार में तो रहूं लेकिन उसके सुख दुख मेरे जीवन में ना आए। संसार के सुख दुख के बीच भी अगर हम समता सीखना चाहते हैं रखना, तो भगवान के चरणों में सुबह से पहले नंबर आकर के हम अपना प्रणाम निवेदित करें। आचार्य भगवंत ने तो ये लिखा हुआ है कि निधत्ति और निकाचित कर्म, जिन कर्मों को हमारे वश में नहीं है परिवर्तित करना, उन कर्मों को भी हम जिन बिंब के दर्शन मात्र से नष्ट कर सकते हैं। वे कब नष्ट हो जाएंगे हमें इसकी चिंता भी नहीं करनी है, हमें तो सिर्फ भगवान जिनेंद्र के दर्शन करके घर लौट जाना है। उस दर्शन के दौरान हमारे भीतर पड़े हुए ऐसे कर्म जिनको कि हमें भोगना अनिवार्य था, उनको भी हम चेंज कर सकते हैं। निधत्ति निकाचित कम पैदी खय जादो जिन बिंब दंशने न, ये धवला जी का वाक्य है। जिन बिंब के दर्शन मात्र से, साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन से नहीं लिखा, समोशरण में जाके जिनेंद्र भगवान के दर्शन से नहीं लिखा, जिन बिंब दंशने नहीं, जिनेंद्र भगवान का बिंब है जिसकी हमने स्वयं प्रतिष्ठा करी, उस जिन बिंब के दर्शन मात्र से हमारे बहुत से कर्म जिनके लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं। और शायद इसीलिए पहले एक परंपरा रही है कि खाने पीने की सामग्री बाद में मिलेगी, नाश्ता पानी बाद में मिलेगा, जाओ पहले चंदन लगा के आओ, जब चंदन देखेंगे माथे पर तब बाकी चीजें मिलेंगी। तो हम लोग बेईमानी भी करते थे, बाहर रखा रहता था चंदन तो भीतर भी नहीं जाते थे, वहीं लगा के और बाहर चले जाते, नहीं समझते थे उस समय। पर अगर आज उन सब के ठीक ठीक अर्थ अपन लगाएं तो यही मैसेज लेकर भी हम लौटें, और इससे आगे मैसेज लेना चाहें जिन बिंब के दर्शन अकेले से, अभी जिन पूजा पर बात नहीं कर रहा हूं आपसे, सिर्फ जिन बिंब के दर्शन से, पूजा उसके बाद, पूजा के मायने कुछ नहीं है, भगवान के गुणों के प्रति अनुराग, भगवान का दर्शन। देखने और दर्शन में बहुत अंतर है। देखना तो होता है यहां पर, अगर आप जयपुर में देखने जाएं तो क्या क्या देखने जाएंगे, हवा महल जाएंगे देखने, जू देखने जाएंगे, और वो अल्बर्ट जो हॉल बना हुआ है वो देखने जाएंगे, और भी जो चीजें देखने की। देखना और दर्शन करना बहुत फर्क है। दर्शन होता है श्रद्धा की आंख से, और देखना होता है इन दो आंखों से। बहुत आसान है, दुनिया दिखती है इन दो आंखों से, लेकिन दर्शन इन दो आंखों से नहीं होता, दर्शन तो श्रद्धा से होता है। इसलिए जिन बिंब के दर्शन के मायने में पूरी श्रद्धा से भर के आऊंगा, भगवान की छवि निहारने के लिए नहीं आया हूं मैं, उसको अपने जीवन में अपनी श्रद्धा के साथ देखने आया हूं, वो दर्शन के। जब हम श्रद्धा की आंख से देखते हैं तब दिखता है। ऐसे तो दो आंखों से रोज देख लेते हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं भगवान, ये मूर्ति कितनी प्यारी बनी हुई है, कितनी बढ़िया वेदी बनाई हुई है, ये तो ये दर्शन नहीं कहलाएगा, ये तो देखना कहलाएगा। उनकी वितरागता दिखाई पड़े कि कैसे तो बैठे हुए हैं शांत, हाथ पर हाथ रखे, इन्होंने करने लायक सब कुछ कर लिया। ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम कितने ही दुनिया में करते रहो, कभी हाथ नहीं रुक पाएंगे तुम्हारे, अगर तुम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ तो फिर जीवन में करने लायक कुछ भी शेष नहीं रहे। संसार बढ़े, हम संसार के कामों से विमुख हो जाते हैं, उतना हमारा संसार कम होना शुरू हो जाता। ये मैसेज दे रहा है, पैर में पैर फंसा करके बैठे हुए हैं, यहां पर मैंने सारी यात्राएं करके देख ली, अपने तक कोई भी यात्रा नहीं पूरी हुई अभी तक, संसार की सारी यात्राएं अपने तक ले जाने वाली नहीं है। अपने तक जाना हो तो पैर में पैर डाल के संसार की यात्राएं स्थगित कर दो, अपने भीतर की यात्रा पर निकलो, तब जाकर के। ये तो हम अपने श्रद्धा से ये मैसेज ले सकते हैं। देखना बंद कर दिया है अब आंख खोल के, और आंख भी नहीं मीची है, बंद भी नहीं करने का प्रयत्न है और खोलने का प्रयत्न भी नहीं है। जैसी सहज दृष्टि है वैसी सहज नासाग्र दृष्टि, संसार में अब कुछ भी देखने लायक शेष नहीं रहा। देखना राग से युक्त होता है और नहीं देखना द्वेष से युक्त होता है। मैंने ना देखने का प्रयत्न कर रहा हूं ना आंख मीचने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं दिख जाता है तो ठीक है, नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, मैं अपने को देख रहा हूं, और जो अपने को देखता है उसको सारा संसार जैसा है वैसा दिखाई पड़ने लगता है। ये मैसेज क्या हम भगवान से नहीं देख सकते, उनके चरणों में अभी हमने और कुछ भी नहीं करना, हमको अभी सिर्फ इतना ही। हमारे भीतर ये जो चीजें मैं आपसे कह रहा हूं ये कहां से आई, ये तो अभी आपको मैंने बता दी इसलिए आपके मन में आई। आप इससे भी ज्यादा अगर दर्शन करेंगे श्रद्धा से, और बातें ऐसा लगने लगेगा कि जैसे भगवान से डायलॉग कर रहे हैं, भगवान हमें कोई मैसेज दे रहे हैं, बातचीत चल रही है, वो चुप हैं, और वन साइडेड डायलॉग संभव है। हम भगवान से एक तरफा बात कर सकते हैं कि जितना जैसा आपका स्वभाव है वैसे ही तो मेरा भी है, लेकिन क्या करूं, मैं संसार के राग द्वेष में पड़ा हुआ हूं, मैं इससे कैसे बचूं। आप कोई बताते ही नहीं, आप बोलते ही नहीं है, क्या मैं भी आपके जैसे ही ऐसे ही हो जाऊं चुप। हां शायद यही ठीक है, अगर मैं चुप होना सीख लूं तो शायद आपके जैसा हो जाऊं। आप कुछ बोलते नहीं है, आपने सब संसार से चुप्पी, मैं भी अब संसार से चुप्पी धारण कर लूं। एक छोटी सी घटना शायद सबको याद होगी, अचानक मुझे याद आ गई, मैं आपसे बात भी कर रहा हूं और भीतर टटोल रहा हूं अपने कि कोई घटना याद आ जाए। हाँ दोनों काम कर रहा हूं। बहुत देर से सोच रहा था कि कौन सी घटना सुनाऊंगा, मैंने कुछ पहले से सोचा ही नहीं आज तो, नहीं तो मैं दो चार घटनाएं तो डिपॉजिट में सोच के रखता हूं यहां आने से पहले कि कोई ना कोई तो सुना ही दूंगा, क्योंकि वो रह जाएगी, बाकी बातें तो मुझे मालूम है कि आधी अधूरी रहेंगी, मेरे दिमाग में आधी अधूरी रह पाती, जितना सोचता हूं उससे आधा बोल पाता हूं। वो घटना एक सेठ जी के घर में एक पिंजरे में एक सुंदर सा पक्षी था, बोलने वाला पक्षी, वो बोल लेता था,
कहते हैं कि ऐसा पक्षी भी होता है जो कि हम जितना सिखा देते हैं तो वो बोलने लगता, वैसा हमारी भाषा बोलने लगता। तोता, मैना, जो भी इस तरह के पक्षी हैं जो शिक्षा, आलाप इत्यादि ग्रहण कर लेते हो, संगी पंचेंद्री हैं वो, हमारा हमारी बात को समझ करके ठीक वैसा ही हमें रिटर्न करने लगते हैं। तो एक दिन उस पक्षी ने अपना जो मालिक था, सेठ था, जब उसको ये कहते हुए सुना कि चलो चलो महाराज जी आए हुए हैं उनके प्रवचन के लिए चलें, तो उसका भी बहुत मन होता था कि मैं भी महाराज के पास, मगर मुझे कौन ले जाएगा। अंतरंग में उसके मन है, वो भी सोच रहा है। दो चार दिन उसने देखा कि रोज सेठ जी सुनने जाते हैं और फिर यहाँ आकर के सुनाते हैं सबके बीच में बैठ करके, वो भी सुनता रहता था, महाराज ने आज ये बात बताई, महाराज ने आज ये बात बताई, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं महाराज, अरे वाह मैं भी पूछ सकता हूँ क्या, उसके मन में आया। तो जब सेठ जी जाने लगे तो उसने कहा कि आप महाराज से हमारे लिए भी कुछ पूछ सकते हैं क्या। हाँ पूछ सकता हूँ, क्या पूछना है? महाराज से पूछना कि मुक्ति का क्या उपाय है, मुक्ति का क्या उपाय है, मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो सेठ जी ने कहा हाँ पूछ लूंगा, इसमें क्या, महाराज तो सबकी बात का जवाब देते हैं, वो तो बहुत खुश होंगे कि किसी पक्षी ने पूछा है, तो हम उनको कहेंगे कि हमारे घर में एक बहुत प्यारा सा पक्षी है और उसने पूछा है कि बंधन से मुक्ति का क्या उपाय है। तो जाकर के बड़े हंसी खुशी से सेठ जी ने जाकर के कह दिया कि हमारे घर में जो पक्षी है आज उसने पूछा है महाराज, आप बताइए। महाराज ने तो जवाब कुछ नहीं दिया, महाराज तो बैठे हुए थे तो लेट गए, और लेट करके जो है और आराम से आँख मीच करके और ऐसे जैसे कि सो गए हों। अरे ऐसा भी कोई जवाब दिया जाता है क्या, मनुष्य को मनुष्य की भाषा में जवाब देना पड़ेगा और पशु को उसकी भाषा में जवाब। आचार्य भगवंतों ने शायद ऐसा ही हमारे ऊपर उपकार किया है, इसलिए लिखा हुआ है कि भगवान जिनेंद्र की वाणी सर्वोपकारी है, सबकी भाषा में सबको समझ में आती है। कैसी होती होगी वो भाषा जो सबके समझ में आती है, हमारी भाषा तो कितनी सीमित है कि हमारी समझ में नहीं आती कई कई बार। शब्दों की दुनिया में अक्सर कुछ ऐसा होता है, कहते हैं कुछ और अर्थ कुछ और हुआ करता है। इतने छोटे से तो शब्द हैं, हम अपना भाव उनमें व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और भगवान की भाषा कैसी होती होगी कि सबके समझ में आती होगी। ठीक वही भाषा, वे लेट गए और आँख मीच ली और चुप्पी साध ली ऐसे जैसे कि सो गए। अब क्या मैसेज दें, उस पक्षी ने इतने बढ़िया से तो पूछा था, अब मैं उसको जाके क्या कहूँगा, सबकी बातों का तो जवाब देते हैं महाराज, और उसकी बात का जवाब ना देकर लेट गए, आँख मीच ली, बोले तक नहीं और ऐसे जैसे सो गए हों। अब क्या करूँ, क्या जवाब देऊँगा, वो तो जाते ही साथ पूछेगा कि मेरे प्रश्न का क्या जवाब दिया। अब यही कह दूंगा कि महाराज ने तो कुछ कहा नहीं, बस तुम्हारा प्रश्न सुन करके, और वे आँख मीच के लेट गए थे। तो जाकर के कह दिया कि भैया हमने तो पूछा था तुम्हारी तरफ से, तो महाराज ने तो कोई जवाब नहीं दिया, मुक्ति का कोई उपाय ही नहीं बताया, बस इतना ही है कि वो तो लेट गए थे आँख मीच के। पक्षी बड़ा प्रसन्न, उसने समझ लिया कि महाराज ने मेरे लिए मुक्ति का क्या उपाय बताया। और दूसरे दिन सुबह, इससे पहले कि नहा धो के सेठ जी और महाराज के प्रवचन और दर्शन के लिए जाएं, उन्होंने सोचा कि पक्षी से आज भी पूछते जाएं, लेकिन वहां जाकर के देखा तो पक्षी तो सिर लटकाए और पड़ा हुआ था मृत प्राय। थोड़ा हिलाया तो ऐसा लगा जैसे प्राण पखेरु उड़ गए हैं। अब क्या करें, पक्षी से बड़ा प्रेम भी था, उधर महाराज के पास जाने का समय हो गया, तो नौकर को बुला के कहा कि देख अब मैं इसको छूऊंगा, मेरा मन तो हो रहा है कि मैं ही इसको निकाल के बाहर रखूं, इसने मेरे साथ इतने दिन रहा, इसका अंतिम संस्कार मैं ही करूं, लेकिन सुन अब ये तो रहा नहीं और मैं छू लूंगा तो मंदिर और नहीं जा पाऊंगा, तू इसको निकाल के पिंजरे से और खोल तो दे और निकाल के बाहर रख और मैं फिर जाऊं। तो पिंजरे का दरवाजा नौकर ने खोला और खोल करके पक्षी को जैसे ही निकालने लगा तो पक्षी तो पहले से तैयार ही था, वो तो उड़ करके अब समझ में आया सेठ जी के कि महाराज ने मुक्ति का क्या उपाय बताया था। भगवान हमें मुक्ति का इतना आसान उपाय बताते हैं लेकिन हम चुप्पी नहीं साध पाते हैं संसार से। हम सो जाएं संसार में और जागते रहें अपने आत्मा में, शायद इतना बड़ा संदेश हम सहज रूप से भी जिन बिंब के दर्शन से, मैं संसार में रहूंगा लेकिन संसार मेरे भीतर नहीं रहेगा, जा रहा हूं संसार में पर आपके दर्शन करके लौट रहा हूं, और आपकी ये चुप्पी मुझे बता रही है कि इन संसार में तो अगर संसार बढ़ाना है तो बोलते रहो, बोलते रहो मतलब संसार के कामों में लगे रहो, और अगर संसार के कामों को हम इतने रसपच के नहीं करें, अनाशक्त होकर के करें तो हम धीरे धीरे संसार से मुक्त हो सकते हैं। जिन बिंब का दर्शन हमें इतनी सारी बातें सिखा देता है। हम अगर कोई मैसेज लेना चाहें तो शायद आवाज विसर्गम बभुषा निरूपयंतम मोक्ष मार्गम, जो बिना बोले ही अपने शरीर से मोक्ष मार्ग का निरंतर प्ररूपण करते रहते हैं ऐसे आचार्य भगवंत, या कि वीतराज सर्वज्ञ भगवान, इनकी अगर हम शरण लेकर के इनसे कोई संदेश इस तरह लें तो जीवन जरूर हमारा अच्छा बनेगा, अनुशासित बनेगा, इसी भावना के साथ कि हम जिन बिंब के दर्शन का रोज नियम बनाएं और अपने जीवन को अनुशासित करें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जब जग वाग शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते सब शेर जगी तट पर सर्व फल पर जाती गईयों में, समतारत पान किया करते सुख दुख दानों घड़ियों में, अंतर गाला वाणी मानो जड़ी हो कुल जड़िया, वंदन तर तर टूट पड़े दिल जावे अंतर की कलिया, लुटाया करते हो सम सम की अभिन शर्मणिया, जहाँ तहाँ Amen.